ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया में श्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध से समाधान नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने के लिए एकमात्र व्यावहारिक मार्ग हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा की।
हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था।
श्री मोदी ने बताया कि क्रोएशिया के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने का फैसला किया गया।
हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने जहाज निर्माण, साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास और उद्योग स्तरीय साझेदारी के लिए दीर्घावधि रक्षा सहयोग योजना बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। दोनों देशों ने 4 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, शिक्षा और युवा मंत्रालय के बीच सहयोग तथा जागरेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना के समझौते शामिल हैं। ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्रों को लेकर एक विमान आज तड़के नई दिल्ली पहुंचा। ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षित आर्मेनिया पहुंचने में उनकी मदद की। ईरान और आर्मेनिया में भारतीय राजनयिक मिशनों की देखरेख में ये सभी छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। ये छात्र कल दोपहर एक विशेष विमान से येरेवन से रवाना हुए थे। ईरान से लौटे MBBS के छात्र जम्मू कश्मीर के जहरान बट ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सरकार का आभार व्यक्त किया।
My name is Zehran Bhatt. I am from Jammu and Kashmir. I am really thankful for India. They did really a great job. They evacuated us really quickly. And I am feeling so happy on my soil, on my land. Thank you very much.
इस बीच इसराइल और ईरान का संघर्ष तेज हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि इसराइल की सेना के हमलों और बमबारी से हताहतों की संख्या बढ़ गई है। इसराइल ने ईरान के राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाया, जिससे कई लोग घायल हो गए। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के सार्वजनिक सुरक्षा के मुख्यालय को नष्ट कर दिया गया है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। उन्होंने ईरान के बिना शर्त समर्पण की मांग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेश की है। श्री पुतिन ने ईरान, इसराइल और अमेरिका के साथ रूस के प्रस्तावों को साझा किया है। जाने माने पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का 93 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सोलापुर में निधन हो गया है। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना जीवन वन, वन्यजीव और साहित्य संरक्षण को समर्पित कर दिया। चितमपल्ली को इस वर्ष 30 अप्रैल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से अलंकृत किया था। वेलावन सेंथिल कुमार एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल मलेशिया के कुंचिंग में जापान के तोमोताका एंडो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।